नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं दीपक और मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 21 बड़े राज्यों में से 17 के लिंगानुपात में गिरावट आई है। हाल ही में आई सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात सामने आई है जो चौंकाने वाले हैं। भारत के लगभग 21,000 राज्यों में लिंगानुपात सर्वेक्षण में जो आंकड़े निकल के आए हैं वो कहीं न कहीं भारत में बदहाल हो रही बेटियों की स्थिति को बयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसका मानक माना जाता है। भारत में प्रति बालक पर बालिकाओं की स्थिति दयनीय होना ये आज की कोई नई बात नहीं रही है। ये तो वर्षों से चली आ रही संकीर्ण सोच हमेशा से ही भारतीय समाज को प्रभावित करती आ रही है। स्वच्छ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के बाद हरियाणा का स्थान है। यहाँ 35 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का नंबर आता है। हमारा सामाजिक माहौल लड़कियों के प्रति अनुकूल नहीं बन पाने के पीछे हर कोई दोषी है। इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता एक खतरनाक रूप ले रही है। इस मानसिकता की भयावहता इससे प्रकट होती है कि जिस गुजरात में पहले प्रति 1,000 लड़कों पर 907 लड़कियां पैदा होती थी, वहां अब यह आंकड़ा गिरकर 854 लड़कियों तक रह गया है। ऐसी स्थिति कई अन्य राज्यों की है जहां प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 800-900 के बीच है। साफ है कि इन राज्यों में केवल तकनीकी का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा बल्कि मेडिकल पेशे की गरिमा के खिलाफ भी काम हो रहे हैं। बच्चों के जन्म के समय ही लिंग अनुपात की खराब स्थिति यह बताती है कि बीते 70 सालों में समाज को बेहतर बनाने पर कितना कम ध्यान दिया गया है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट न तो राज्यों को स्वस्थ बताती है और न ही भारत को प्रगतिशील।
धन्यवाद दीपक। दोस्तों, मैं अंजलि आज आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। 2 साल में 1,008 मासूम लापता। झारखंड में मानव तस्करी से जुड़े मामले आए दिन आते रहते हैं। यही कारण है कि पिछले 2 साल में राज्य से करीब 1,000 से अधिक लड़के लड़कियां मानव तस्कर के चंगुल में फंस चुके हैं। छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी सबसे अधिक हो रही है। इसका मुख्य कारण है गांव की गरीबी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गांवों में सक्रिय मानव तस्कर इसका फायदा उठाते हैं। भले ही सरकार मानव तस्करों को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास करती है, लेकिन इनका नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि मानव तस्करी का धंधा जारी रहता है। 1830 से 50 के बीच अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को कुलियों के काम के लिए काफी उपयुक्त पाया और फिर यहीं से शुरू हुआ मानव तस्करी का खेल। उस समय नौकरियों और पैसे का लालच देकर अंग्रेज असम और पश्चिमी बंगाल की चाय बगानों में उन्हें काम कराने ले गए, जो धीरे धीरे बृहद रूप लेने लगा और अब मानव तस्करी गांव समाज के लिए नासूर बन गया। राज्य के 10 जिले पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, लातेहार, गुड्डा, साहेबगंज, लोहरदगा तथा रांची के ग्रामीण क्षेत्र की युवतियां दलालों के झांसे में आकर मानव तस्करी के दलदल में फंस जाती है। पिछले 2 साल में झारखंड से करीब 1,008 बच्चे बच्चियों के लापता होने की सूचना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज है। हर तरफ फैले भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण इन एजेंटों को लड़के और लड़कियों को बेचना आसान है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे इस समस्या को खत्म किया जा सके। साथ ही लोगों को उनके इलाके में अच्छी शिक्षा और बेहतर सुविधाएं देने की जरूरत है जिससे माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह ना बेच सके। इसके साथ ही लड़कियों और महिलाओं के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है जिसके बाद ही मानव तस्करी को कम या खत्म किया जा सकता है।
धन्यवाद अंजलि जी। तो दोस्तों, सुना अभी अंजलि जी की जानकारी। तो मैं किशन और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट सिटी मिशन की रफ्तार में कमी क्यों। शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में शुरू होने के बाद से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए जारी की गई राशि में से 1.8% से ज्यादा का उपयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2015 में शुरू किए गए इस योजना का लक्ष्य 100 स्मार्ट शहरों को बनाना, शहरी निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और भारत की तेजी से शहरीकरण को आगे बढ़ाना है। शहरों में निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित समाधानों का उपयोग करके ऐसा करने का प्रस्ताव है। समिति कहती है कि मिशन में 3 वर्षों के बाद भी पहचान की गई परियोजनाओं में अधिकांश अभी भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के चरण में है। रिपोर्ट में कहा गया था कि शहरी योजनाओं की कमी से कई परियोजनाएं प्रभावित हैं। JNNURM प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए नवंबर 2012 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने परियोजना प्रबंधन, भर्ती चुनौतियों और नगर पालिका स्तर पर व्यापार करने में कठिनाई की ओर इशारा किया था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्य स्तर की नोडल एजेंसियों की स्थापना के लिए परियोजना निष्पादन और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों का निर्माण करें। हालांकि केंग की रिपोर्ट में पाया गया है कि 10 राज्यों ने इन्हें स्थापित नहीं किया था और कई राज्य में कई पद रिक्त रहे थे।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।